समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
बादल घिर आए, गीत की बेला आई, आज गगन की सूनी छाती भावों से भर आई। चपला के पावों की आहट आज पवन ने पाई, डोल रहे हैं बोल न जिनके मुख में विधि ने डाले। बादल घिर आए, गीत की बेला आई। जी हाँ, इस सुनहरे मौसम में प्रसिद्ध रचयिता हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो प्रियंका, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन FM गोल्ड 100.1 FM on megahertz. And well, as Priyanka has already said, the weather is just amazing because with after the sunshine and a bit humidity, I would like to say a lot of humidity, which we have been experiencing from a very long time. The much needed respite has come with these rains.
और शगुन को तो आज लग रहा है कि आज ही वाकई में बारिश का मौसम आया है, और वैसे भी श्रावण मास का आज पहला सोमवार
right,
है
it's the first
और मानसून दस्तक दे चुका है दिल्ली में, लेकिन एक राहत जो कहते हैं ना,
मच नीडेड रिस्पाइट, वो आज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिस्पाइट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई कैन से दैट। एंड लिसनर्स, वी हैव lots of interesting stuff coming up for you in the next half an hour. We have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. So don't go anywhere. Just be with us. Turn up the volume of the radio, and even if you are traveling, just plug in those earphones and be with us. We'll begin with the headlines first. Budget session of Parliament begins today. Finance Minister Nirmala Sitharaman tables Economic Survey 2023-24 in Lok Sabha.
और आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिजर्व बैंक को चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.5% रहने की उम्मीद है।
Finance Minister to present first budget of third term of NDA government tomorrow.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा।
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान असर्ट्स देयर इज नथिंग टू हाइड इन द अलेज्ड नीट यूजी पेपर लीक केस। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about National Flag Day. Well, our national flag is our pride. The National Flag Day is observed annually on July 22nd to commemorate the date in 1947 when the Constituent Assembly of India adopted the tricolour as the official flag of independent India. And from that day onwards, the Indian tricolour has served as the symbol of nation's unity, courage and aspirations.
बिल्कुल सही कहा शगुन, और राष्ट्रीय झंडा दिवस न केवल झंडे के सम्मान का दिन है, बल्कि देश के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मूल्यों और बलिदानों पर विचार करने का भी दिन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने से ठीक पहले 1947 में इसी दिन भारतीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। तब से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व का स्रोत रहा है।
इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब द ट्राइकलर एज फ्लैग ऑफ फ्रीडम नॉट ओनली फॉर आवर सेल्व बट अ सिम्बल ऑफ फ्रीडम टू ऑल पीपल हु मे सी इट। The version of this flag is closest to the current one. That this came into existence in the year 1923. It was designed by Pingali Venkaya and had saffron, white and green stripes with the spinning wheel placed in the white section. It was hoisted on April 13, 1923 in Nagpur during an event commemorating the Jallianwala Bagh massacre. It was named the Swaraj flag then, and it became the symbol of India's demand for self-rule led by the Indian National Congress.
बिल्कुल, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 1931 में पारित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र के साथ स्वराज ध्वज को संप्रभु भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया यानी केसरी है, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा रंग समान अनुपात में है।
And in the center, Priyanka, of the white band is a navy blue wheel that represents the chakra. Its design is that of the wheel which appears on the abacus of the Sarnath Lion capital of Ashoka. Its diameter approximates the width of the white band and it has 24 spokes in total. The Indian national flag with its distinct tricolor design is a powerful symbol of the nation's unity and diversity. Each color and symbol on the Indian flag holds deep meaning and reflects the nation's values overall.
बिल्कुल, जो रंग है हमारे तिरंगे में उनका एक अपना उद्देश्य है और किस उद्देश्य के साथ अपनाए गए वो आपको बताते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज का शीर्ष भाग केसरिया रंग का है वो देश के साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारतीयों की बहादुरी और निस्वार्थता का प्रतीक है। बीच में है सफेद पट्टी, ये धर्म चक्र के साथ शांति का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और अपनी विविध संस्कृतियों और समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। और आखिरी में है हरी पट्टी, भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ये देश की कृषि और प्राकृतिक विरासत और विकास तथा समृद्धि के प्रति जो हमारी कटिबद्धता है उसको दिखाता है।
And in the white band, the Ashok Chakra is situated at the center in the navy blue. And this is also known as Dharma Chakra, the wheel of the law. This symbol was adopted from the, as we have told you, the Sarnath Lion capital. And it symbolizes constant movement and progress. We also have a flag code of India. The flag code of India is a set of guidelines and regulations that govern the display, usage and respect of the national flag. Enforced by the Ministry of Home Affairs, Government of India, the Flag Code of India outlines strict protocols for hoisting, handling and displaying tricolor to ensure it is treated with dignity and honor, which is really very important. It specifies rules also, this flag code, regarding the proportions, colors and positioning of the flag and prohibits its use in any manner which is disrespectful to its status as a national symbol.
भारतीय ध्वज संहिता भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े गौरव और अखंडता को बनाए रखने, एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में इसके महत्व को मजबूत करने का कार्य करती है। अगर अपने कानून के अनुसार देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी द्वारा बनाया जाना है, जो हाथ से काटा गया ऊनी या सूती या रेशमी खादी का कपड़ा है। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत की एकमात्र इकाई है जिसे भारत के ध्वज की आपूर्ति और निर्माण के लिए मान्यता प्राप्त है।
Now talking about the part 4A of the constitution, it specifies the 11 fundamental duties. And according to Article 51A, Part A, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respects its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, because our national flag is our pride.
और अगर आपने जैसे बताया था पिंगली वेंकैया की बात की थी, महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना की थी, उन्होंने 1916 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक से पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने 24 ध्वज डिजाइन पेश किए। 2009 में देश में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए पिंगली वेंकैया के नाम और उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था।
Well, we were also talking about Prime Minister Jawaharlal Nehru. I'm quoting from his speech. This flag is not a flag of empire, a flag of imperialism, a flag of domination over anybody, but a flag of freedom not only for ourselves, but a symbol of freedom to all people who may see it. Wherever it may go, it will bring a message, I hope, of freedom to those people, a message of comradeship, a message that India wants to be friends with every country of the world and India wants to help any people who seek freedom.
Bilkul, aur shagun jab hum apna rashtriya dhwaj dekhte ek alag si bhavna हमारे मतलब मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं
right.
और बहुत ही एक गर्व की भावना आती है जब हम ध्वज को देखते हैं और बहुत ही किसी कवि ने सुंदर लिखा है कि हे ध्वजा राष्ट्र की नील गगन पर फहरो उन्मुक्त पवन में लहर लहर तुम लहरो तेरा केसर या रंग वीर का बाना सीखा है इससे सबने प्राण लुटाना और श्वेत रंग जो धवल चांदनी सा है वह विश्व शांति का सबको संदेशा है और हरित जो रंग है फैला हरियाली सा वह उन्नति रिद्धि सिद्धि का संदेशा है वह नील चक्र 24 तीलियों वाला आगे बढ़ने की बात करे मतवाला हे ध्वजा राष्ट्र की नील गगन पर फहरो उन्मुक्त पवन में लहर लहर तुम लहरो और समय अपने अब क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का बारिश में जहां दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली है हालांकि जल भराव की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है
right.
जैसे अब हम आ रहे थे अपने
वी ऑल्सो एक्सपीरियंस
जी हाँ तो बहुत मुश्किल भी होती लेकिन मुंबई में भी देखा जाए तो हर साल उनको भी जल भराव की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है मुंबई शहर और उसके आसपास के जो उपनगर हैं बहुत जो बाढ़ और जैसी समस्याओं से जुड़े रहते हैं इन दिनों और उनकी जो दैनिक जीवन है उस वो बाधित होता है इससे वास्तविक समय में मुंबई में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने हाल में अन्य संस्थानों के साथ एक वेब पोर्टल और एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है क्या है ये नई तकनीक और कैसे इससे मुंबई जो वासी हैं उनको राहत मिलेगी आइए सुनते हैं अंकिता की इस रिपोर्ट में
द वेब पोर्टल मुंबई फ्लड डॉट इन एंड द एंड्रॉयड ऐप नेम्ड मुंबई फ्लड ऐप वर डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग एट IIT बॉम्बे टेकिंग अस थ्रू वेरियस फीचर्स ऑफ दिस वेब पोर्टल एंड ऐप इज प्रोफेसर डॉक्टर सुबिमल घोष फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे
IIT बॉम्बे क्लाइमेट स्टडीज हैव डेवलप्ड अ ऐप एंड अ वेब पोर्टल व्हिच इज एसेंशियली अ सिस्टम for Mumbaikers and which will run by the Mumbaikers for rainfall forecasting for next 3 days as well as the flood monitoring. So the idea here is that we are actually going for forecasting for next 3 days where we are using our in-house downscaling model, so global model output where downscaling at a very local scale and producing the rainfall output at certain stations which we are producing and we can see next 3 days what is happening, what is the present rainfall condition as well how did we perform over the last few days in the season. The second thing is that we need to understand why it is waterlogging. Suppose you are at IIT Bombay and you are planning to go to Dadar. You want to know whether Dadar is waterlogged or not. How to get this information? For that, we have installed a few sensors around Mumbai and trying to get the waterlogging information. But the 7 sensors cannot really represent the entire such a big city. So the idea here is that if someone can see this is a waterlogging, some qualitative information they can provide through that app and immediately it will be available to others.
These platforms will also display recent tweets related to Mumbai rainfall. And flooding on the web portal. Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
Well, Priyanka, the concept of Parikrama or Pradakshina, which is also called circumambulation around a holy shrine, is an age-old Indian tradition, as we know. Circumambulation gives us the feeling of surrendering to God and provides us with a pure and fresh mind to worship. Among many Parikrama rituals across the country, the Giri Pradakshina of Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swami Temple in Simachalam near Vishakhapatnam is a very important one. We have more on this from our correspondent.
The annual ritual of Giri Pradakshina, circumambulation of the hill of Sri Varahalakshmi Narasimha Swami Temple in Simhachalam near Visakhapatnam is considered very sacred and auspicious. It is believed that by doing this ritual, all wishes of devotees will come true and their families will be blessed with peace. Giri Pradekshana is done on Ashada Purnima, that is the full moon day in the month of July. This year it is done on 20th July. People from all parts of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Orissa participate in this auspicious event by singing devotional songs and chanting holy words. This ritual involves walking over a stretch of 32 kilometers around the hill. This year over 3 lakh devotees participated in the event.
My name is Krishna Veni. Very happy to participate in Simhagiri Pradakshina. This is the second time of doing this. Participating with a few lakh people gave me a new excitement to see them all. During this, many voluntary organizations have provided water, food, medicines, etc. so that the devotees do not face any difficulty along the way. Doing this pradakshina is not only spiritual but also great for social gathering and social bonding. So I felt happy.
This annual ritual is not only seen as a religious event but also as one that promotes social bonding and community harmony. Devotees across the social spectrum immersed in spiritual fervor displayed a sense of oneness in the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. Sai Sishla for Parikrama from Akashvani, Vijayawada.
और जैसा हम बता चुके हैं कि श्रावण मास का पहला सोमवार है और वार्षिक कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। श्रावण मास में होने वाली इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेने उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जाते हैं।
And now, talking about Bihar, a large number of devotees are reaching at different temples. Shravani Mela are being organized at several places in the state. We have more from our correspondent.
In Bihar, the atmosphere has become devotional with chanting of Bol Bam and Har Har Mahadev on the first Monday of Shravan month. In Sultanganj in Bhagalpur district, thousands of Kanwariya are fetching holy Ganga water and proceeding to Devghar for Jalabhishek of Lord Shiva at Baba Baidnath Dham. At the famous Shiva temple of Baba Garib Nath in Muzaffarpur, large number of devotees have thronged to perform Jalabhishek. Elaborate security arrangements and crowd management have been made across the state. Dharmendra Kumar Rai, Akashvani News, Patna.
And now we go on to Uttar Pradesh. On the first Monday of Shravan month, there was a huge rush of devotees in Lord Shiva temples since morning. And we have more from a correspondent on this.
In Varanasi, the city of Lord Shiva, there have been queues of Kanwariyas since late night for worship and Jalabhishek of Kashi Vishwanath. All the necessary arrangements have been made for the devotees by the temple administration. According to the temple administration, more than 6 lakh devotees are expected to reach Vishwanath Dham on the first Monday of Shravan. With the report of Om Avasthi, this is Aishwarya Rai Nigam from Akashvani, Delhi.
और श्रावण मास के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में भी मंदिरों में काफी भीड़ देखी जा रही है श्रद्धालुओं की. क्या रिपोर्ट है इस बारे में, सुनते हैं अपने संवाददाता संजीव शर्मा से.
एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ महाकालेश्वर टेंपल मैनेजमेंट कमेटी इन उज्जैन मृणाल मीणा सेड दैट द फर्स्ट प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड महाकालेश्वर विल बी टेकन आउट टुडे थ्रू द ट्रेडिशनल रूट विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर. महाकाल विल मीट द डिवोटीज इन द फॉर्म ऑफ मन महेश. स्पेशल डेकोरेशंस वेयर ऑल्सो डन इन अदर temples of the state today and devotees have arriving in large numbers since morning. Sanjeev Sharma, Akashvani News, Bhopal.
Well, meanwhile in Delhi, police has issued a traffic advisory for Kanwar Yatra. A large number of Kanwariyas reached Delhi and some of them travel to Haryana and Rajasthan through Delhi borders. Motorists and road users are advised to plan their travel in advance to avoid inconvenience and delays.
Aur Delhi ki yatayat police ne kaha hai ki Bahari Ring Road par GT Canal Road se aane wali city buson ko chhodkar sabhi bhari vahanon ko seedhe Rashtriya Rajmarg 24 ki or mod diya jayega. Unhein Wazirabad Road aur GT Road पर शहादरा की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. तो आप जब निकलें तो सोच समझ के और देखभाल के निकलें.
नाउ वील टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे.
ऑन द 22nd ऑफ जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग. इन 1921 Pingali Venkaya presented the flag design to Gandhiji that consisted of two colors, red and green. Arya Samaj leader and educationist Lala Hansraj suggested the addition of the charkha in the center of the flag.
Gandhiji later modified the flag by adding a white stripe in the center, which signifies peace. In May 1923 at Nagpur, during peaceful protests against the British rule, the flag was carried by thousands of people.
The flag came to be associated with nationhood for India, and it was officially recognized at the annual session of Congress in August 1931. In the session, the current arrangement of stripes and the use of saffron color instead of red were also approved. The three horizontal stripes of saffron, white and green stand for, respectively, courage and sacrifice, peace and truth, and fertility and growth.
On July the 22nd, 1947, the Constituent Assembly of India adopted the Indian national flag, but with slight modification. Its stripes remained the same, saffron, white, green. But the spinning wheel was replaced by a blue-colored Dharma Chakra with 24 spokes, and thus evolved our national flag.
We also remember freedom fighter Jatindra Mohan Sen Gupta on his death anniversary. Born on the 22nd of February 1885, Jatindra Mohan hailed from Chittagong, now in Bangladesh. Originally a member of the Anushilan Samiti, he became a barrister at law. In many criminal cases, he defended the nationalist revolutionaries in the court and saved them from the gallows. He pleaded for Surya Sen, Ananta Singh, Ambika Chakraborty in the Pahartali trial and also saved a young revolutionary, Premananda Datta, who had been accused in the case relating to the murder of an inspector.
Jatindra left his lucrative legal practice to take part in the non-cooperation movement in 1921. He organized and led the strikes, directly involved with the Satyagrahi laborers of tea estates in Chandpur. He was arrested in 1921. Jatindra Mohan succeeded Deshbandhu Chittaranjan Das as the president of the Bengal Provincial Congress Committee and also as the mayor of the Calcutta Corporation in 1925. He was re-elected mayor of Calcutta in 1926, 1927, 1928 and 1930. He was elected to the Bengal Legislative Council in 1926 and went to Burma in February 1930, where he also addressed a public meeting. The police arrested him on the 14th of March 1930 on the charge of inciting people against the government and opposing the separation of Burma from India. He was tried and acquitted.
Jatindra Mohan returned to Calcutta and took active part in the civil disobedience movement 1930. Arrested and detained several times, he started a non-official inquiry into the atrocities committed on the people of Chittagong following the raid on the Chittagong Armory in April 1930. He went to London in October 1931 to attend the Roundtable Conference and placed his inquiry report before it.
Returning to India by an Italian ship, he was arrested aboard the ship near Mumbai on the 17th of January 1932 and detained in the Yerwada jail, Pune. Transferred to Darjeeling, his health started failing due to ill treatment and solitary confinement. He was interned in Ranchi on the 5th of June 1933, where only his wife was allowed to attend to him. Seriously ill with heart disease, Jatindra Mohan Sen Gupta, lovingly called Deshpriya, died in prison at Ranchi on the 22nd of July 1933.
Well, moving on to our business news section, the Indian benchmark indices ended lower for the second consecutive session amid selling in heavyweights as traders were cautious a day ahead of union budget announcements. At close, the Sensex was down 102 points or 0.13% at 80,502 and the Nifty was down 22 points or 0.09% at 24,509. In the global crude market, Brent crude is trading down at $82.38 per barrel. WTI crude is trading at $80.05 per barrel when reports last came in. And at multi-commodity exchange, gold for the August 2024 contract is trading at 73,066 rupees per 10 grams, while silver for September 2024 contract is trading at 89,217 rupees per kilogram when reports last came in.
और खेल जगत के क्या समाचार है? आज एशिया कप में मैच चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच.
So in this, the host Sri Lanka defeated Malaysia by 144 runs in a group B match in Dambulla. Opting to bat after winning the toss, Sri Lanka posted 184 for the loss of 4 wickets in stipulated 20 overs. And in reply, Malaysia were bundled out for 40 runs in 19.5 overs.
जी हाँ, क्षमा करें, Sri Lanka और Malaysia के बीच मैच चल रहा है. हालांकि भारतीय फॉर्म जो है बहुत दमदार चल रही है एशिया कप में और दावेदार मानी जा रही है एशिया कप जीतने की एक बार फिर से. और आपको और अन्य खेल खबर के बारे में बता देते हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8,50,00,000 रुपए देने की घोषणा की है. और अब चलते हैं अगले सेगमेंट में. जानी मानी हस्तियों को याद करते हैं. आज के दिन 1898 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित विनायक राव पटवर्धन का. उन्होंने 1932 में पुणे में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी. संगीत शिक्षा में भी उनका सराहनीय योगदान रहा. उन्होंने संगीत पर कई किताबें लिखी. वे मराठी रंगमंच के अभिनेता और गायक भी थे. संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था. आइए सुनते हैं उनके गायन की एक झलक.
Well, today it's also the birth anniversary of C.V. Sridhar, Indian screenwriter and film director. He has directed nearly 60 films in Tamil, Hindi and Telugu languages. He is known for films such as Kalyana Parisu, Amar Deepam, Nazrana, Dilek Mandir, Pyar Ke Kieja and Gehri Chal. And today it's also the birthday of Selena Gomez, the singer, actress and producer. She began her career as a child actress starring on the children's television series Barney and Friends. She also played the leading role as Alex Russo on the Disney Channel sitcom Wizards of Waverly Place. As a recording artist, she signed with Hollywood Records in 2008 and formed the pop rock band Selena Gomez and the Scene. And we have for you this beautiful song in her voice, Wolves.
There's a heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth, water or wine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky.
और अब बॉलीवुड के महान गायक को याद करते हैं. हम बात कर रहे हैं मुकेश की, जिनका आज ही के दिन 1923 में जन्म हुआ था. ये माना जाता है कि मुकेश जो थे वो केएल सहगल की गायकी के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने जब गायकी में अपने करियर की शुरुआत की तो उनके अंदाज में वो झलक भी दिखती थी. शायद आप में से कुछ ना जानते हों कि शुरुआत में उन्होंने फिल्म निर्दोष, दुख सुख जैसी कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया और उन फिल्मों के गीतों को भी आवाज दी. उनके प्रोडक्शन के तहत 1956 में आई फिल्म अनुराग में उन्होंने अभिनय भी किया और उसे संगीत भी दिया. एक समय था कि मुकेश सिने जगत के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर की आवाज बन गए थे और किसी की मुस्कुराहटों पे फिल्माया गया राज कपूर पे गीत और मुकेश की आवाज का ये बानगी आपको सुनाते हैं.
राहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके.
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग क्लॉड सोतेत, French film director and screenwriter. His first movie, Hello Smile, which is originally Bonjour Sourire, was released in the year 1956. He's known for movies like A Heart in Winter, Nelly and Monsieur Arnaud, and The Things of Life. And today, it's also the birthday of Arman Malik, singer, songwriter, record producer. He's known for singing in multiple languages, including Hindi, Telugu, English, and many more. And for you, we have this beautiful song in his voice.
जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ हुआ है आज पहली बार जो ऐसे
I beg your pardon, the song was not Main Rahun Ya Na Rahun, you were listening to it.
बिल्कुल आज मैं हूँ पहली बार करके अरमान मलिक ने जो गाया गीत वो आपको सुनाया और पहली बार हम दोनों ने एक साथ प्रोग्राम भी किया
right.
और अब एक साथ वाइंड अप करते हैं समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए तो प्रियंका और शगुन को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की
नमस्कार, नमस्कार।